आठ रबीउल अव्वल की मुनासिबत से जो कि 11वें इमाम हज़रत इमाम हसन असगरी अलैहिस्सलाम इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से 260 या 260 में आपकी शहादत वाक़ हुई 8 रबीउल अव्वल को, और 6 साल सिर्फ आपका दौरे इमामत रहा। इस मुनासिबत से ये मजलिस मुनाकिद की गई है, और परवरदिगार आलम से दस बदुआ होते हैं कि परवरदिगार आलम इस मजलिस को इनकाद करने वाले जो इस बानियान मजालिस हैं, जो शरीक हैं इसमें, बहन और बहनी जितनी बहनें हैं, जितनी हमारे भाई यहाँ पर शरीक हैं, सबको परवरदिगार आलम अजरे अजीम इनायत करे इंशाल्लाह ताला। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जिनकी इमामत का आगाज़ 254 से यानी इस्लामी कैलेंडर के हिसाब से शुरू हुई, और सिर्फ 6 साल का जो अरसा है वो टोटल आपकी इमामत का रहा, और तमाम इमामों में सबसे कम तरीन जो ऑफिशियली मनसब इमामत के पर रहे हैं वो 11वें इमाम इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम हैं, और सबसे कम उम्र भी समझे जाते हैं शहादत के अतबार से 28 साल की उम्र में आप शहीद हुए हैं। अगरची जो है इसके ऊपर कुछ इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन वो इख्तलाफ एक दो सालों का हो सकता है दीगर अइम्मा के हवाले से। और मोतमिद अब्बासी खलीफा था और एक इंतहाई कमज़ोर खलीफा था, उनके हाथों में उनके तरफ से जहर दिया गया इमाम अली मकाम को, कि हम थोड़ी सी उसमें कुछ चीज़ें इंशाल्लाह शेयर करेंगे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जिस वक़्त इमामत संभाल रहे हैं तो उस वक़्त तकरीबन इमामत के तसलसल को और शिया जो एक सिलसिला शुरू हुआ अहले तशी का, या शिया या फॉलोअर ऑफ इमाम अली या अहलुल बैत के नाम से, उसको ऑलमोस्ट तकरीबन 230 ईयर्स हो चुके थे। यानी अभी तक पहले इमाम से लेकर 11वें इमाम की आगाज इमामत से तक तकरीबन ऑलमोस्ट यानी कुछ ईयर्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन 230 ईयर्स तकरीबन गुजर चुके हैं। और इस दौरान में कभी अहले तशी को सिवाय मौला अली अलैहिस्सलाम के 4.5 साल के उस पीरियड के अलावा कभी भी शियों को यानी हुकूमत नहीं मिली। कभी किसी इमाम को ऐसा मौका नहीं मिला कि इमाम जो है माशरे में विलायत तशरीई जिसको हम कहते हैं, तकवीन में तो विलायत है इमाम की लेकिन कायनात में इमाम का कंट्रोल है, ये हकीकत है, लेकिन दूसरी तरफ जो जाहरी तौर पर भी इमाम को ही हाकिम होना चाहिए था, इमाम को काजी होना चाहिए था, इमाम को फैसला करना था लोगों की, लोग कैसे जिए कैसे रहें, शहर कैसे डेवलप हो, डेवलपमेंट किस सेक्टर्स के अंदर प्रायोरिटी के तौर पर लिया जाए, किसको सेकेंडरी किसको थर्ड पे लिया जाए, और एक मुस्लिम दुनिया की इंटरनल जो एक सोसाइटी है उसको किस बेस पर बुनियाद पे होना चाहिए, उस सोसाइटी का निज़ाम क्या होना चाहिए, इसी तरह एक्सटर्नल जो पॉलिसीज हैं या जिसको फॉरेन अफेयर आप कह सकते हैं गैर मुसलमानों के साथ, या एज ए इस्लामिक स्टेट दूसरे नॉन मुस्लिम स्टेट्स के साथ उसके रिलेशंस किस तरह होने चाहिए, ये सारे जो उमूर हैं जो कि अल्लाह के रसूल अंजाम देते थे। आप जानते हैं खतूत लिखा था अल्लाह के रसूल ने बहुत से उस वक़्त के बादशाहों को जो गैर मुसलमान थे, और भी मुख्तलिफ जो है काफ़ी बातचीत रही, बहुत सारे लोगों को एज ए रेफ्यूजीज अफ्रीका में एक अजाइलम के लिए भेज दिया क्योंकि वो अंडर थ्रेट हो चुके थे और मुसलमानों की तादाद कम थी मक्के के अंदर, वगैरह वगैरह ये सारी बातें जानते हैं। उसके बाद मौला अली अलैहिस्सलाम का जो 4.5 साल का पीरियड है, अगरचि आपको इंटरनली बहुत ज़्यादा बिजी रखा गया, जंगों पे जंगे, 3 बड़ी जंगें मौला अली अलैहिस्सलाम के दौर में मुनाफिकीन के खिलाफ आपको लड़नी पड़ी, और आपको इतना बड़ा जो है वक्त नहीं मिला, फिर आपको शहीद कर दिया गया। तो ये तकरीबन 230 साल का जो पीरियड है इसमें हम ये देखते हैं कि अइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम जो कि हाकिम वक्त भी हैं, खलीफा भी हैं, वसी रसूल भी हैं, और कम्प्लीटली वसायत रखते हैं, नुमाइंदगी अगर अल्लाह के रसूल की नुमाइंदगी है तो मुकम्मल नुमाइंदगी रखते हैं। अल्लाह के रसूल हाकिम थे, इमाम को हाकिम होना है। अल्लाह के रसूल जज थे, फैसले करते थे शरी उसूल ज़वाबित के बाद के मुताबिक इमाम को फैसला करना है। इंटरनल पॉलिसीज, एक्सटर्नल पॉलिसीज, सारी चीजें जो है मुस्लिम उम्मा की वो इमाम के हाथों में थी। आपने जो है गवर्नर्स बनाने थे, आपने पॉलिटिकल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, सोशल सिस्टम, फिर एजुकेशनल सिस्टम, फिर तरबियत का निज़ाम, फिर दीगर जो जितने भी रिक्वायरमेंट्स हैं एक एज ए ह्यूमन सोसाइटी के लिए, वो सब कुछ इमाम ने असल में लीड करना था और क़यादत करनी थी। तो ये चीज़ अइम्मा के हाथ से छीनी गई और अफसोसनाक सूरत हाल ये बनी कि लोगों में भी इतना ज़्यादा एक अच्छी तादाद में लोगों में शऊर भी नहीं डेवलप हुआ कि वो कुछ इस तरह इकदाम करें, अइम्मा का इस तरह साथ दे दें कि इस लेवल पे साथ दे दें कि सिस्टम को चेंज किया जा सके, सोसाइटी को इमामत और विलायत और गदीर की आइडियोलॉजी के हिसाब से जो कि खुदा की तरफ से दी गई एक निज़ाम है और वही निज़ाम इमाम ज़माना लेकर तशरीफ़ लाने वाले हैं, उसी निज़ाम को नाफिज करना चाहते हैं। उसी निज़ाम के लिए हमसे कहा गया है कि आप अपने तौर पर कोशिश जारी रखें, कहें कामयाबी मिलती है नहीं मिलती है वो आपकी बात है। ईरान वालों को कामयाबी मिल गई अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद है कि इराक में भी ये कामयाबी मैसर आ जाएगी कुछ अरसे में। खैर, तो शिया जुग्राफिया बहुत ज़्यादा फैल चुका था। अब शिया जो है सिर्फ मक्का मदीना या कूफा या इराक या करबला तक महदूद नहीं थे, तशय्यो बहुत फैल गया है। जो साउथ एशिया से लेकर जो है आपके यहाँ ईरान से लेकर जो रेशियन, जो आज जिसको हम रेशिया से अलग होने वाली स्टेट कहते हैं, समरकंद और बुखारा तक जो है मौजूदा उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, किर्गिज़िस्तान, ये जितने भी हैं यहाँ तक तशय्यो फैल गई थी। इसी तरह अफ्रीका के अंदर तो चैलेंजेस भी बहुत ज्यादा थे क्योंकि तशय्यो अपोजिशन में थी हमेशा। चाहे प्रैक्टिकली तशय्यो अपोजिशन करे या ना करे, पॉलिटिकली क्लियरली एक ऐसा स्टांस रखे या ना रखे पब्लिकली, लेकिन जो है हुक्मरान बनी उमैया बनी अब्बास वो अपोजिशन समझते थे अहले तशय्यो को, इसलिए हमेशा उनको वो एक थ्रेट समझते थे, इसलिए अंडर प्रेशर रखते थे और उनको ज्यादा यानी पॉलिटिकल एक्टिविटीज तो बहुत दूर की बात होती थी, बहुत लिमिटेड पैमाने पे, सोशल एक्टिविटीज, इकोनॉमिकल एक्टिविटीज और रिलीजियस प्रैक्टिसिंग में बहुत ज्यादा आजादी मुयसर नहीं होती थी। टाइम टू टाइम जो है डिफरेंट तरीकों से सख्ती की जाती थी। अब 11वें इमाम का जो दौर है वो थोड़ा सा यूनिक भी है कई पहलू से दीगर अइमा के दौर के एतबार से। एक तो ये है कि अब तशय्यो फैल चुकी है और चैलेंजेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं। दूसरा ये है कि एक नई सिचुएशन डेवलप होने जा रही है जिसमें यह है कि खुद इमाम के बाद जो इमाम आएंगे वो इमाम गैबत में रहने वाले हैं और उम्र के एतबार से भी 4-5 साल से ज्यादा एज उस इमाम की नहीं होगी। और क्योंकि रिवायात और अहादीस में क्लियरली मौजूद थी ये चीजें और बनी अब्बास के खुलफा भी, दीगर मजाहिब और मसालिक के लोग भी अंडरस्टैंड करते थे, जानते थे कि इन एक जो है इनका जो नजरिया है कि एक इनका जो आखिरी इमाम होगा वो दो उनके बेसिक दो बेसिक एजेंडे होंगे उस इमाम के। नंबर एक ये है कि वो जमीन में अदल इंसाफ का निज़ाम लाएगा। दैट्स मीन ये है कि बनी अब्बास के जो खलीफा हैं जो नस्ल दर नस्ल एक मौरूसी पॉलिसीज के तहत जो है बाप के बाप बेटा या भाई को ही इक्तदार मिलता था वो अंडर थ्रेट है। इसका मतलब क्योंकि वो एक इंसाफ पर मबनी निज़ाम ला रहे हैं, न कि खानदानी बुनियादों पर, न कि बाप मरा तो बेटे को वरासत मिल गई, ये बुनियाद नहीं है बल्कि काबिलियत की बुनियाद का निज़ाम आएगा अदल इंसाफ का। दूसरा ये थे कि मुंतकिम के तौर पे कि इंतकाम भी लेंगे जालिमों से जो जुल्म करते रहे हैं पास्ट में भी और जो उस वक़्त भी जुल्म के निज़ाम को चाहेंगे और पसंद करेंगे, चाहे अदल के टाइटल से हो या अदल के लिफाफे में डाल के जुल्म करते हों, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा थ्रेड है। तो लिहाजा इमाम ज़माना को लेकर एक बहुत ही सेंसिटिव पाई जाती थी, बहुत सेंसिटिव थे वो लोग कि भाई इसलिए इमाम ज़माना की तमाम जो विलादत का मराहिल रहे हैं वो बहुत ही सैक्रेट रहे हैं, बहुत लिमिटेड लोगों को इमाम से मुलाकात के लिए जो है शरफ मिला है। ये एक और चैलेंज था इंटरनली अहल तशी के लिए भी कि कहें अहल तशी वैसे भी टाइम टू टाइम काफी सारे इश्यूज खड़े होते गए थे। ठीक है कि मरकजी जो तशय्यो इसना अशरिया है वो तो बाकी रहे, लेकिन उनमें बहुत सारे ग्रुप्स बन गए, छह इमामी हमारे पास ग्रुप्स बन गए, जैदिया हम में से निकल गए थे, और इसी तरह इमाम के जो भाई थे जाफर, जिनको जाफर कद्दाब के नाम से बहुत ज्यादा शोहरत पाया बाद में, क्योंकि झूठे ऐसे दावे किए इमामत के भी और दिगर मराहिल के भी, हत्ता वो तो अब्बासी जो खुलाफा हैं वो तो जाता था उनसे जाके मिलके साजिशें करता था कि मैं एंड पे इंशाल्लाह एक इशारा करूंगा इमाम की शहादत के हवाले से। तो ये एक सिचुएशन बड़ी यूनिक किस्म की सिचुएशन थी और इमाम ने इन सब चीजों को संभाल के चलना था। और इमाम अंडर क्या है, वॉच है, इमाम आजादी नहीं है। तीन बादशाह गुजरे हैं इस छह साल के अरसे में, क्योंकि बनी अब्बास का भी मसला ये था कि बनी अब्बास का जो भी बादशाह आता था या खलीफा आता था वो एक पपिट होता था, कठपुतली बादशाह होता था, क्योंकि ताकत उनके पास नहीं होती थी, ताकत का मरकज वो लोग नहीं थे, बल्कि जो आर्मी या फौजी इस्टेब्लिशमेंट जिसको आप कहते हैं आज की जबान में, उनके हाथों में असल पावर होती थी और बिहाइंड द सीन वो असल में चला रहे होते थे, ये पपिट होते थे। क्योंकि बनी अब्बास एक स्लोगन के तहत आए थे, अपने आप को पैगंबर खुदा से अटैचमेंट किया था, पहले जो है अहले बैत के नाम से आए, इसलिए लोगों में उनके लिए एक रिस्पेक्ट मौजूद थी, जूठी हो या जो भी हो, तो इसलिए तुर्क फिर नॉन अरबिक भी थे तो उनके लिए इजी नहीं था कि डायरेक्टली वो खुद आके रूलिंग करते, इसलिए वो बिहाइंड द सीन करते थे, जो आर्मी एस्टेब्लिशमेंट होती थी तुर्क मोस्टली थे उनके हाथ में मेन पावर थी। और इसलिए आप देखते हैं कि एक शॉर्ट पीरियड में तीन खलीफा आ जाते हैं। मुतवक्किल का जो बेटा है, मुतवक्किल मालूम है हम अहले तशी अच्छी तरह जानते हैं, मुतवक्किल वही है जिसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे पे हल चलवाया, ज्यारत से मना किया, सख्त तरीन सजाएं तजवीज की, पांव काटना शुरू कर दिया, जबरदस्ती जिंदा आग की भट्टियों में डाला जाता था, तेल की कड़ाई में फेंका जाता था, बहुत सारी कई बार एक पूरी जंग उसने शुरू की हुई थी कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे की तरफ कोई ना जाए, करबला कोई इतनी ज्यादा आइडेंटिटी के साथ ना रहे, ये खत्म हो जाए। तो मुतवक्किल का जो बेटा है मोतज पहला खलीफा वो बनता है इमाम के दौर में, और ज्यादा पीरियड नहीं रहता, लेस देन वन ईयर या मोस्टली वन ईयर, उनको खुद जो है यही जो फौजी होते हैं तुर्क जो इस्टेब्लिशमेंट होती है उनको गिरफ्तार करती है, उसके अपने महल के सहन में कोर्टयार्ड जिसको आप कहते हैं वहां लाकर उसको बिल्कुल नेकेड यानी नंगा करके उसको इतने कोड़े मारे जाते हैं और कि वो बिल्कुल अदमुआ हो जाता है, और उसके बाद जिंदा उसे दीवार में चुन दिया जाता है। लिहाजा जो शुरू का पीरियड रहा है जैसे मोतज का टाइम था, क्योंकि सियासी स्टेबिलिटी नहीं थी इक्तदार के एवानों में, तो इमाम आली मकाम की तरफ भी तवज्जो हुकूमत की कम रही, तो इसका मतलब यह कि इमाम के पास थोड़ी सी एक फ्रीडम मुयसर आ गई, थोड़ी सी आजादी मिल गई। इस आजादी का मतलब क्या है, इमाम फ्रीली कोई वो नहीं कर रहे कि इमाम नमाज ईद पढ़ाते हो, इमाम नमाज जुमा पढ़ाते हो, खुतबे देते हो, इमाम के सामने सैकड़ों का इज्तिमा होता हो, ऐसा नहीं है, हम इस तरह की फ्रीडम की बात नहीं कर रहे। इतनी फ्रीडम की इमाम आउट ऑफ हाउस अपने घर से बाहर निकल सकते हैं, सड़कों पर, चौराहों पर, गलियों में, दुकानों में, बाजारों में किसी से मिलना चाहे मिल सकते हैं, कोई इमाम से मिलना चाहे, इस वक्त इतनी ज्यादा मसला नहीं है, मुलाकातें हो सकती है, इमाम को घर पे दावत दी जा सकती है, इमाम किसी को अपने घर में बुला सकते हैं ओपनली, बाहर जब घर से बाहर तशरीफ ले आते हैं तो दूसरे लोग अपनी आइडेंटिटी के साथ कि मैं शिया हूं एंड आई एम योर फॉलोअर, मुलाकात हो सकती है, और इमाम भी एज ए इमाम मासूम मुलाकात करते हैं लोगों से। ये मैं फ्रीडम की बात कर रहा हूं, इस लेवल की फ्रीडम है। लेकिन उसके फौरन बाद जब मोतस को मार देते हैं, तुर्क एस्टेब्लिशमेंट मार देती है, और उसके बाद जो है अगला मोहतदी आ जाता है, मोहतदी के दौर में फिर सख्ती शुरू हो जाती है, और मोतमद जो कि लास्ट खलीफा होता है उसके दौर तक शुरू हो जाती है। इमाम को सिर्फ ये नहीं कि अब इमाम की जो इस तरह की थोड़ी सी मूवमेंट जो थी, फ्रीडम हासिल थी, वो बंद हो जाती है, हाउस अरेस्ट हो जाते हैं इमाम, और फिर लास्ट टाइम में इमाम आली मकाम को न सिर्फ हाउस अरेस्ट करते हैं बल्कि काइंड ऑफ प्रिजन यानी आप टोटली यानी कोई इमाम से मिलता है तो वो इतना अंडर वॉच है कि अगर मिला है तो उसकी तफ्तीश शुरू होगी, आप क्यों मिले थे, कौन है, क्या उसको फॉलो करते हैं आप, क्या उनके शिया हैं आप, बड़ी सख्ती शुरू हो गई उसके बाद, बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन बन गई है। सिक्स ईयर है टोटल इस 6 साल के अंदर। लिहाजा इमाम अली मकाम, लेकिन कार इमामत जाहिर है कि जारी वो सारी रहा और कार इमामत को इन हालात में भी जारी रहा, और जो अहले तशीई जो कि समझदार लोग थे वो भी जो है तशय्यो मजहब के अकाइद और उसके अखलाकियात और इमाम के पैगामात और मैसेजेस को, वकला का जो एक खुफिया नेटवर्क था जिसके ऊपर मैं बहुत डिटेल में माजी में पास में बातें कर चुका हूँ, उनके जरिए चीजें फैलती रहती थी। हम चाहेंगे यहां से कुछ इमाम आली मकाम के नूरानी कलिमात से इस्तेफादा करें जो अहले तशी के बारे में हैं और अहले तशय्यो या शियों की डिफिनेशंस भी बयान की हैं और एट द सेम टाइम उनको गाइडलाइन भी दिया है। जाहिर है कि ये शॉर्ट पीरियड के लिए तो नहीं है ये फरामीन, सिर्फ ये कहें जी द टाइम ऑफ मसलन मोतज या मोतमिद या मोहतदी या इमाम के पीरियड तक नहीं, कयामत तक रहनुमा उसूल है ये। तो इमाम फरमाते हैं कि इन नशियातना हुमुल लदीना यत्तबिउना आथारना وَيُطِعُونَ فِي جَمِيعِ أَوَامِرِنَا وَنَوَاهِينَا فَأُولَئِكَ شِيعَتُنَا فَأَمَّا مَنْ خَالَفَ فِي كَثِيرٍ مِمَّا فَرَضَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَلَيْسُوا مِنْ شِيعَتِنَا۔ ڈیفینیشن بیان کر رہے ہیں بھائی کون ہے ہمارے فالوورز، کس کو ہم شیعہ کہیں۔ فرمایا ان شیعتنا ہمارے شیعہ، یعنی دا پیپل ہو آر فالوئنگ می اور دے کین سے دے آر مائی فالوورز، तो कौन है ये टाइटल रख सकते हैं؟ कह रहे हमारे शिया वो हैं जो हमारी मेथोडोलॉजी और हमारे तरीके कार पर अमल करते हैं، न ये कि वो मेथोडोलॉजी और तरीके कार अपनी जिंदगी में कहें और से कॉपी ले करते हैं उनको फॉलो करते हैं लेकिन थ्योरेटिकली अकाइद के तौर पर कहते हैं नहीं हम तो असल में शिया हैं، दैट्स मीन द फॉलोइंग ऑफ अहले बैत अलैहिस्सलाम۔ कह रहे कि हमारे फॉलोअर्स की पहचान ये है कि वो जो मेथड उनकी जिंदगी में होता है किस बेस पर वो लाइफ गुजार रहे हैं، क्या उनका तरीकेकार अच्छा बुरा सही गलत के जो मयारात और स्टैंडर्ड्स या पैरामीटर्स उनके पास है वो क्या हैं، वो हमारे तरीके पर करते हैं और तमाम अमरो नहीं में، तमाम अमरो नहीं में मतलब यानी जो करना है जिस चीज को नहीं करना है، किसको करना है किसको नहीं करना है، इसको अंजाम देते वक्त भी या इसको चूज करते वक्त भी वो हमें देखेंगे कि हम किसको करते थे और किसे रोकते थे، किस चीज को अंजाम देना जरूरी समझते थे، किस चीज से हम बचना जरूरी समझते थे۔ फिर फरमाते हैं यानी हर अमरो नहीं में हर करने और न करने वाले के फैसले के को लेकर हमारी इताअत करते हैं، यानी वो हमें फॉलो करते हैं، दैट्स मीन दे आर आवर फॉलोअर्स، यानी अगर ये काम करते हैं तो हमारे फॉलोअर्स हैं، लेकिन अगर सिर्फ कहते हैं हम मानते उनको हैं करते लेकिन किसी और के हिसाब से हैं तो जाहिर है अंडर क्वेश्चन है۔ इसलिए फिर फरमाते हैं इसलिए वो हमारे शिया हैं، बहुत खूबसूरत जुमला फरमाया फउलाइका शियातुना، मतलब ये क्योंकि वो हमारी बात मानते हैं हमारे लाइफ स्टाइल को अपनाते हैं हमारे तौर तरीके अपनाते हैं लिहाजा वो हमारे फॉलोअर्स हैं۔ फिर फरमाते हैं क्लियर करते हैं चीजों، हालांकि इनफ था इतना लेकिन जाहिर है कि सारे लोग इंटेलेक्चुअल नहीं होते हैं، सारे लोगों की अकल इतनी ज्यादा डीपली चीजों को अंडरस्टैंड नहीं، हालांकि इतनी ज्यादा गहरी बात भी नहीं है، लेकिन लकीर के फकीर लोगों की कमी नहीं है दुनिया में، अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ लेवल्स के लोग खलक किए हैं और लोग भी अपनी इंफॉर्मेशन मालूमात दीनी जज्बात एहसासात، कुछ लोग दीनी मसले में जज्बाती बहुत ज्यादा हैं लेकिन अकल का काम अक्ल शऊर और लॉजिकल काम कम होता है، कुछ लोगों में आप देखते हैं कि जज्बातियत भी बहुत लो लेवल की होती है، बहुत ही लो लेवल की जज्बातियत होती है، मेच्योरिटी नहीं होती है उसके अंदर، लिहाजा और क्लियर करते हैं मसले को ताकि हर लेवल का आदमी अंडरस्टैंड करे कि ये कितना सीरियस इशू है۔ फिर फरमाते हैं मन खालफना फी कसीर मिम्मा फरद अल्लाह अलैहि फलैसु मिन शियातिना، ज़हन में रखो और उनकी आइडेंटिटी ये है कि लेकिन जो लोग यानी हमारे शियों में से अल्लाह ताला की तरफ से उन पर फर्ज करदा बहुत सी चीजों की मुखालिफत करते हैं तो ये क्लियर है कि वो हमारे फॉलोअर्स नहीं है، वो हमारे शिया नहीं है، फलैसु वो नहीं है، मिन शियातिना हमारे फॉलोअर्स में से नहीं है۔ इस चीज को सामने रखते हुए चलते हैं कि इमाम आली मकाम की सीरत में एक उसूल को उठाते हैं, एक प्रिंसिपल को। वो है इमाम आली मकाम की सीरत में दफ उस सैया बिल हसना। ये मतलब क्या है, मैं घबराए नहीं इस अरबिक टर्मिनोलॉजी से। ये है कि बुरी चीज को अच्छी चीज के जरिए से खत्म कर देना या दूर करना या आंसर करना। एक बुराई है, एक गलत चीज है, उसे हम अच्छे चीज के जरिए से खत्म कर देते हैं या आंसर करते हैं या जो है उसको फेस करते हैं। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम जो सोशल हमारे बिहेवियर्स है ना, सोशल जो रवैये हैं, समाजी जो रवैये होते हैं, इमाम को लेकर समाजी रवैये बड़े सख्त है। मसे इमाम आले मकाम अगर कहें निकल रहे हैं तो ये नहीं कि सारे इमाम के जायरे की सामर्रा में तो सारे छावनी थी, सिर्र मंदरा के अंदर तो सारे जो है इमाम के फॉलोवर्स नहीं थे, वो तो हुकूमत के फॉलोवर्स थे और जानते थे कि हुकूमत का सबसे बड़ा एनिमी और अपोजिशन जो है वो हसन अस्करी अलैहि सलाम है। तो लिहाजा कुछ लोग हुकूमत को खुश कराने के लिए फी सबीलिल्लाह इमाम की इंसल्ट करते थे, इमाम के साथ बुरे तरीके से पेश आते थे। बहुत सारे ऐसे वाकयात मौजूद हैं कि मसलन दो शख्स आ रहे थे, दो अफराद थे मार्केट के अंदर, एक इमाम को देखकर सलाम करते हैं धीमे अंदाज से, वो इमाम के चाहने वालों में से थे और मानने वालों से। दूसरे दूसरा पूछता, ये कौन था जिसको आप सलाम कर रहे थे? तो कहते हैं ये हसन इब्ने अस्करी है। तो वो आदमी रुकता है, पलट के वापस जाता है और इमाम को एक बुरा जुमला कहकर लौट आता है, और बाजार में बैठे हुए सारे लोग उसे सुनते हैं। जिस जो मानने वाला था उसने आस्था से सलाम किया क्योंकि उसकी जान खतरे में थी, जो मुखालिफ था उसने ऊंची आवाज में इंसल्ट की इमाम की ताकि सबको पता चले, ताकि सरकार और हुकूमत के पास उसकी जो है फाइल बन जाए कि ही इज द ट्रू फॉलोवर, ही इज अवर मसलन लॉयल आदमी है, हमारा वफादार है। ये एक बड़ा अलमिया है, आज भी है, माफ करना मैं एग्जाम्पल्स नहीं दे सकता, लेकिन हम दाएं बाएं जरा गौर से आंखें खुली रखें, दिल की यहाँ की नहीं, तो समझ में आ जाएगा। कुछ लोग हुकूमतों को, हुक्मरानों को, जिन हत्ता जालिम हुकूमतों को खुश करने के लिए अपने सोशल मीडिया पे ऐसी पोस्टें करते हैं कि वो जालिम हुकूमत उसकी पोस्ट से, उसकी बात से, उसके अमल से खुश हो जाए, और वो ये सबक करते हैं कि हम तो आपके साथ वफादार हैं, वो एक्स वाई जेड हैं, एक्स वाई जेड और फला फला है, दे आर लिविंग हियर बट दे आर नॉट लिविंग हियर, उनका बिहेवियर आपके अगेंस्ट है, वो आपको शैतान कहते हैं, वो आपको जालिम हुकूमत कहते हैं। अमेरिका के कुछ कहानियां मेरे पास हैं, कुछ उलमा के साथ अफसोस के साथ मोमिनीन कहने वाले कुछ लोगों ने ऐसा ही बिहेवियर अमल अंजाम दिया, उनको थ्रेट किया कि मौलाना हम तुम्हारी वो बातें जो तुम हिजबुल्ला के बारे में कहते हो, तुम ईरान के बारे में मोहब्बत में कहते हो, हम जाके अथॉरिटीज को बताएंगे कि ये तो प्रो ईरान है, ये तो प्रो हिजबुल्ला है। तो ये होता है, उस वक्त भी थे, यू वी कैन अंडरस्टैंड, आज भी ये रवैये मौजूद हैं अजीजो। कहा अगर चंदे की बक्स खोलकर हमारे हैंड ओवर नहीं किया तो हम कंप्लेन करने जाएंगे, किसके पास हम जाएंगे? हुकूमत के पास कि भाई ये बंदा जो है ऐसा है वैसा है, किक आउट करो, ही इज द प्रो ईरान, हु इज ईरान, ईरान इज द शिया कंट्री है। लिहाजा अगर वहां पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं तो ऐसे एक पोस्ट डाल दो, मैसा अमीनी फॉलो फलान, ह्यूमन राइट्स फलान के अंडर में, ताकि जालिम को ये पता चले ये मेरी किम का आदमी है। वो जो हया इफ़त पाकदामनी की बात करते हैं, जो जिसको हम ईरानी गवर्नमेंट कह रहे हैं, बसीज कहते हैं, उनका बंदा नहीं है, बल्कि वो जो स्ट्रीट में चंद सौ लोग बेहयाई की जुलूस निकाल रहे हैं, जो कहते हैं कि हमें बेहयाई चाहिए, बेपर्दगी चाहिए, वो उस कैंप में है, दैट मीन ही इज द कैंप ऑफ जालिम। तो ये इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के दौर में भी ये इश्यूज, बाकी इमाम में भी था, बाज लोग जाके पैसे लेते थे, खुद इमाम के भाई ने पैसे लिए, इमाम का भाई जाके वहां पर बातें करता है, कंट्रोल नहीं कर सका अपने आप को भाई होने के बावजूद, है 10वें इमाम का बेटा होने के बावजूद जाफर कज़्ज़ाब ने बड़े ब्लेंडर्स किए। तो लिहाजा सामाजिक सख्त रवियों में इमाम अली मकाम क्या करते थे, मिस बिहेव का जवाब हमेशा अच्छाई से दिया करते थे। अलबत्ता मैं इसको आगे क्लियर कर दूंगा कि इसकी मीनिंग्स क्या हैं। और एक बात जहन में रखनी चाहिए, ये जो है ना कि बुरे किस कोई हमारे साथ बुरा करता है तो हमें अच्छाई के साथ जवाब देना, ये कुरानी उसूल भी है। कुरान और इतरत दोनों, यानी कुरान नातिक और सामित, और दोनों का यही हमें जो है मैसेज मिलता है। आपके साथ अगर कोई बुरा रवैया इख्तियार करता है, आप अच्छे से जवाब दे दें। हर जगह ईंट का जवाब पत्थर से नहीं होता है, ईंट का जवाब गुलाब के फूल से भी दिया जा सकता है, पत्थर के मुकाबले में दुआ भी दी जा सकती है, जैसे कि हुजूर पाक दिया करते थे, जैसे कि जनाब सैयदा हुजूर पाक से कहती थी कि बाबा जान ये कौम जाहिल है, आप इनको बददुआ नहीं देंगे। हुजूर पाक फरमाते थे अल फातिमा तो उम्म अबीहा, ये तो अपने बाप की बेटी है, मेरे जख्मों पर मरहम रखती है, गर्म पानी से जो है जो मेरे ऊपर गंदगी फेंकी है उसे धोती है, और फिर मेरे पास आती है, थुड़ी के नीचे हाथ रख कर कहती है कि बाबा जान ये कौम हाउलाइल जो है ये कौम जाहिल है, आप इसे बद्दुआ तो नहीं देंगे ना। तो ये जो है ये तर्ज अमल, ये कुरानी तर्ज अमल है, ये हुजूर पाक का तर्ज अमल है या मैं मासूमीन का है। लिहाजा कुरान मजीद भी हमें बहुत सी जगहों पर फरमाता है कि साहिबान अकल, आपके पास अकल है, आप अकिलाना काम करें। आप माशाल्लाह से मंतकी आदमी हैं, अकल है, समझदारी है, सोच बूझ है आपके पास, समझदारी का काम करें। किसी बेवकूफ ने आपके साथ अगर मिसबिहेव किया है तो जरूरी नहीं है कि आप उसके साथ मिसबिहेव करें। सूरह रात में आयत नंबर 19 से लेकर यानी 19 से लेकर 22 तक आप देखें तो इसी तरफ इशारा कर रहा होता है। फरमाते हैं अब हमें यालम अन्नमा अंदला इलैका मिन रब्बिकल हक कमन हुवा आमा, फिर फरमाते हैं इन्नमा यतदक्करु उलिल अलबाब। देखें जो अक्लमंद लोग हैं ना, समझदार है, मिच्योर हो चुके हैं, ना कि एज वाइज मिच्योर हो चुके हैं। हो सकता है किसी आदमी की उम्र 60 साल हो, उसका बिहेवियर बचगाना हो, क्योंकि ये जो मेच्योरिटी है इसमें एज का फैक्टर नहीं आता है। वो मेच्योरिटी जो एक बालिग लड़के और बालिग लड़की की मेच्योरिटी को हम को डिफाइन करते हैं, वो सेम यहाँ पर बात नहीं हो रही है। बहुत से लोग हैं एज बहुत ज्यादा होने के बावजूद मिच्योर नहीं होता, उनके कामों में मिच्योरिटी नजर नहीं आती है, खासकर दीन के कामों में, मजहब के कामों को लेकर। आयत नंबर 22 में इसी सूरह रात के अंदर फरमाते हैं वल्लदीन सबरु इब्तिगा वजह रब्बिहिम अकामुस्सलात वन्फकू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन वइलानियतन यदरूना बिल हसनति सय्या। हसना यानी अच्छाई, सय्या यानी बुराई, उलाए कलहुम उखबद्दार, यानी ये फरमाते हैं जो अच्छे लोग हैं ना, नमाज और इबादत और बंदगी का क्याम करते हैं, उन्हें जो कुछ हम देते हैं उसमें से वो आगे लोगों की जरूरतों के लिए भी खर्च करते हैं, ये लोग कौन हैं? ये दरहकीकत ऐसे अच्छे मिच्योर समझदार लोग हैं जो बुराई का खात्मा करते हैं अच्छाई के जरिए से। मिस बिहेव का आंसर जो है अच्छे बिहेव के साथ, गुड बिहेव के साथ दे देते हैं। मोमिनीन की आइडेंटिटी में से एक ये है, सूरह कसस की आयत नंबर 51 से 55 तक अगर आप देखें तो फिर इसी तरफ इशारा हो रहा है जो 11वें इमाम की सीरत में हमें बहुत ज्यादा मिलता है। تلك الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم هم بهم يؤمنون إذ يتلى عليهم قالوا آمنا به, اور پھر آگے بڑھنے کے بعد پھر فرماتے يدرون بالحسنة السيئة, یہ وہی لوگ ہیں جن کے پاس کتاب کا علم بھی ہے, سمجھداری بھی ہے, ایمان بھی ان کا پکا ہے, مچور ایمان ہے, تقلیدی نہیں ہے, مسلمان باپ کے گھر میں پیدا ہو کر مسلمان نہیں ہے, اسلام کو سمجھ کر مسلمان ہے وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں ان کی ایک identity और एक क्वालिटी ये है कि यदरून बिल हसनत सैया, मिस बिहेव के मुकाबले में ये गुड बिहेव करते हैं, बुरे रवियों के मुकाबले में अच्छे रवैये से पेश आते हैं। यानी समाजी, ये जहन में रखें कि समाजी सोशल इश्यूज में, पॉलिटिकल इश्यूज में, फैमिली इश्यूज में, स्पेशली तौर पर हस्बैंड वाइफ के इश्यूज में, फैमिली ब्रादर भाई बहन चचा मम्मी पुपी, ये जो हमारी फैमिलीज और खानदान होते हैं, इसके अंदर जो मिसबिहेवियर होता है उसका जवाब गुड बिहेवियर से देना, ये सुन्नत और सीरत अहले बैत है, ये कुरान का एक उसूल है। इसका बेसिक हदफ ये है कि दूसरों की जो मिसबिहेव है उसको दूर करना है, हमें खत्म करना है, क्योंकि मिसबिहेव कोई अच्छी चीज नहीं होती है। या दूसरा जो इसका लाइटली अगर हम सोचें तो हदफ ये है कि मिनिमम नुकसान पैदा हो जाए। अगर मिसबिहेव का जवाब मिसबिहेव से कर दें, खानदान के अंदर झगड़े पैदा हो जाएंगे, सोसाइटी में फितना और फसाद पैदा हो जाएगा, और अल्लाह सुबहान व तआला इस चीज को पसंद नहीं करता कि सिले रहमी के अंदर फितना और फसाद पैदा हो, सोसाइटी के अंदर इंसानों में फितना और फसाद पैदा हो। टेंशन को जितना रिड्यूस किया जाए अच्छी बात है, टेंशन नहीं होना चाहिए। कशीदगी जिसको हम कहते हैं उर्दू में, इसका खात्मा खानदानों में, फैमिलीज में, सोसाइटी में रहना चाहिए। इसलिए जो है एक अब जो यहाँ पे इस पॉइंट के अंदर जो लास्ट मेरा एक पॉइंट है वो ये है, सब पॉइंट जिसको आप कह सकते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ जाने से पहले, वो ये है कि इससे मुराद देखें हकुल्ला नहीं है। ये मिसबिहेव के मुकाबले में गुड बिहेव से आंसर करना और बर्दाश्त करना, या इमाम बर्दाश्त करते थे या कुरान ने कहा बर्दाश्त करो, ये प्रिंसिपल्स में नहीं है। ऐसे प्रिंसिपल जिसमें हकुल्ला पामाल होता हो, हकुल्ला खत्म होता हो। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल देते हैं, कोई ये कहे जी यार क्या फर्क पड़ता है, ईरान में हुकूमत को चाहिए कि वो जो खवातीन बाहर निकल के चादर उठा के आग लगाती हैं, चंद सौ हैं उससे ज्यादा नहीं है, पूरे ईरान में इकट्ठे करो तो शायद 5000 भी उनकी तादाद नहीं बनती है, मेल एंड फीमेल, ये आग लगाती हैं या उतार के नंगा फिरती हैं। वो कहती है यार हम फ्री रहना चाहते हैं, आप हमारे ऊपर जो है वो ना करें, पाबंदियां ना लगाएं वगैरह वगैरह। तो कह रहे हैं कि इसको थोड़ा सा छोड़ दें, फर्क क्या फर्क पड़ता है, इन चंद हजार को रहने दिया जाए आप। नहीं 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 नहीं, ये गलत है। हकुल्ला है, हया इफ्फत पाकदामनी हिजाब, औरत का हक का मसला नहीं है, मर्द के हक का मसला नहीं है, ये हक इंसान का नहीं है, असल में खुदा का हक है। खुदा के हुकूक के मुकाबले में मिसबिहेव को गुड बिहेव से आंसर, यानी वो है तो गुड बिहेव से आंसर करना है, लेकिन इतना पोलाइट होना और इतना फ्लेक्सीबिलिटी नहीं दिखाई जा सकती है कि हम कहें जी चलो ठीक है यार रहने दो कोई बात नहीं है, उनका काम ही हमेशा ऐसा मेरे साथ ऐसी रवैया रखना है, वो मिलता ही तो हमेशा गलत तरीके से मिलता है, वो पर्सनल इश्यूज में था, जाती फैमिली इश्यूज को बरकरार टेंशन खत्म करने के लिए था। लेकिन अगर कोई वायलेट करे खुदा के किसी प्रिंसिपल्स को, एक कहता मुझे बेहया होना है, मुझे इफ्फत को तार तार करना है, मुझे पाकीजगी और तहारत खत्म करनी है, मैं खुद कर रहा हूं ना, मेरी मर्जी, मेरी जिस्म है, मेरा मर्जी है, मेरी बॉडी है, मेरी मर्जी, मेरी बॉडी मेरी मर्जी नहीं है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी नहीं हो सकती है। ये कहे और कोई शोहर कहे जी मैंने अलाउ किया अपनी बीवी को जाए वो बेहिजाब रहे, तू होता कौन है अलाउ कर सकता है, यह हकुल्ला है। जैसे कि खुदा ने तुम्हें हक नहीं दिया कोई बीवी ये कहे मैं अपने शोहर को अलाउ करती हूँ नंगा फिरे सड़कों पर जाके, किसी भी औरतों के साथ जाके अपने रिलेशन बनाए, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, आई एक्सेप्ट इट, मैं अलाउ करती हूँ, एक्सेप्ट भी करती हूँ, परमिट भी करती हूँ। शोहर बीवी के बारे में कहे ये नहीं हो सकता, ये हकुल्ला है। और कुरान मजीद खुले वाज़े अल्फाज में कहता ला ताखुदुकुम बिहिमा राहफतन फी दीनिल्लाह, को अल्लाह के दीन के मामले में आप जिसको रहम और मोहब्बत और छोड़ देना गुड बिहेव कहते ना वो नहीं करना, ये गलत काम नहीं करना, ये आप पूरी इंसानियत को तबाह कर रहे हो, खुदा के कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हो। यहां पर जो है ना राफत वाला, कोई राफत यानी नरमी दिखाना, डील देना, प्यार से पेश आना, ना 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 ना, यहाँ आप पहले प्यार से पेश आएंगे, तरीके से समझाएंगे, नहीं अगर करेंगे तो आप सख्ती करेंगे, तो ये सख्ती नहीं है, यह आज हमारे जहन में सख्ती बन गई, नहीं आप रोकेंगे इसको, आपको इसके लिए ताकत का इस्तेमाल करना पड़े तो कंट्रोल ली ताकत यूज करेंगे, रोकेंगे, किसी को हक हासिल नहीं है कि इस तरह ओपनली वायलेट करे चीजों को, ये किसी को अथराइज नहीं किया है। तुम्हें बेफद रहना, तुम अपने घर में जो कुछ करते हो उस पे वो किसी को कोई लेना देना नहीं है, खुदा ने भी हक नहीं दिया किसी के घर के अंदर घुस के देखा जाए कि प्राइवेटली कौन क्या करता है अपने घर में, लेकिन आप सड़क पे आ जाएंगे, सड़कों पे ये करेंगे, ये इज नॉट, ये अलाउ नहीं है। ला ताखुदुकुम बिहिमा राफतुन फी दीनिल्लाह, ये हो ही नहीं सकता, मर्द है औरत है फर्क नहीं करता। लिहाजा बुराई का जवाब नेकी से देना है, लेकिन अल्लाह के हक की खिलाफ वर्जी नहीं करना। जो उसूल और प्रिंसिपल हैं, वो उसूल और प्रिंसिपल्स को तोड़ा नहीं जा सकता है। मिसाल के तौर पर कोई ये कहे जालिम और जाबिर और फासिद के साथ हम गुड बिहेव करें, भाई सद्दाम के साथ गुड बिहेव कर लें, या नऊज बिल्ला कुछ लोग कहें यजीद और हरमला के साथ गुड बिहेव करते हैं, भाई मिस बिहेव किया उन्होंने, हम गुड बिहेव करते हैं, शिमर के साथ भी, इब्न मुलजम के साथ भी, हरमला के साथ भी, ये जालिमीन में से है ना, या आज भी बहुत सारे जालिमीन हैं, हर दौर में जो जालिमीन हैं। ये नहीं कैसे इस उसूल को यहां अप्लाई, कभी इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने किसी अब्बासी खलीफा के साथ तो ये नहीं अपनाया तरीका, उसको तो नहीं कहा मोमिनीन मानने वालों मेरे फॉलोवर्स ये जो जालिम बनी अब्बास के हुक्मरान है इनके साथ गुड बिहेव करना इस मीनिंग्स में, नहीं, वो जालिम है, जालिम को जालिम कहेंगे, फासिद को फासिद कहा जाएगा, जुल्म करता है उसके साथ वो नहीं कर सकते। या कोई खातून या कोई मर्द जो है अर्ज किया कि इफ्फत व हया और पाकदामनी के हवाले से, लिहाजा आम जिंदगी में जाती और इज्तिमाई या सोशल जिंदगी में और मजहबी कामों में तबलीग दीन में कोई हमारे साथ मिसबिहेव करता है तो हम सिर्फ और सिर्फ अच्छाई के लिए, टेंशन की कमी के लिए, ताकि क्योस क्रिएट ना हो, टेंशन क्रिएट ना हो, हदफ से दूर ना हो जाएं, आपस में उलझते ना रह जाएं, फैमिली मेंबर्स आपस में नाचाकी पैदा ना हो, फैमिली को टूटना नहीं चाहिए, बहुत जरूरी है, खानदान जरूरी है, माँ बाप बेटा बेटी चाचा मामा दादा दादी नाना, ये रिश्ते बहुत मुकद्दस हैं, ये हमारी फैमिली होती है, फिर दायरा बढ़ता जाता है, ये बहुत है, इस सिस्टम को बचे रहना चाहिए। इसके अंदर कोई मिसबिहेव भी हो जाता है कोई बात नहीं है, दिल बड़ा रखो, सियाई सदरी करो, माफ कर दो, आगे बढ़ो, आइमा की ये जो है हमारे लिए गाइडेंस है। मैं बस आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता, मोटी मोटी दो चार बातें तेजी के साथ अर्ज करूंगा, डिटेल में जाए बगैर आगे बढ़ते हैं। इसीलिए देखते हैं कि ग्यारहवें इमाम है हुमाम और आसमान इमामत व विलायत के इस ग्यारहवें जो है दरख्शां सितारे की हयात तैयब व ताहिर में देखते हैं कि हक के मसले को समझाने के लिए लोगों को मुख्तलिफ तरीकों से समझाते थे। लॉजिक मंतिक वो बुनियादी चीज़ है, अकल के साथ दलील की, क्योंकि अकल हुज्जत है, अकल अहम तरीन चीज़ है, बुनियादी तौर पर वो चीज़ें यही चीज़ें होती थी, लोगों को इसी तरफ लेके आते थे कि लोग जज्बाती इमोशनल अटैचमेंट पैदा ना करें दीन के साथ, इमामों के साथ सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट ना रखें बल्कि अंडरस्टैंड करें, और फिर अंडरस्टैंड करने के बाद बढ़ें, आगे निकलें, उसमें फिर जज्बा भी आ जाए, जज्बात भी आ जाए, अकल की रहनुमाई में, ईमान की रहनुमाई में उस जज्बे और जज्बात को लेके बढ़ें। सिर्फ एक इमोशनल अटैचमेंट रखें, वो इमोशनल अटैचमेंट इतनी ज्यादा कोई प्रोडक्टिव नहीं है या कोई नतीजा देने वाली नहीं है। इसीलिए फरमाया फलिल्लाह हुज्जतुल बालिगा, यानी मजबूत मजबूत लॉजिकल अकली दलीलों के साथ अपने आर्गुमेंट को जो है इमाम पेश करते थे। और कुरान मजीद भी जो है, कुरान मजीद के हवाले से भी ग्यारहवें इमाम फरमाते थे इन्नमा खातब अल्लाहुल आकिल, जब इमाम से पूछा गया कि ये जो आयतें हैं फलिल्लाहिल हुज्जतिल बालिगा, या जो आयतें हैं ला याकिलून, या है उलिल अलबाब, तो इनसे मुराद कौन है? इमाम की तफसीर है, आप जानते हैं, पहले हमने कई बार डिस्कस किया है, उस तफसीर का कुछ कोटेशंस हमारे पास मुख्तलिफ बुक्स में मौजूद है, वो तफसीर तो हमारे पास अनफॉर्चुनेटली नहीं है उसी तरह। उसमें जो है इमाम ने ये इरशाद फरमाया, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने, इन्नमा खातब अल्लाहुल आकिल, इन तमाम आयात में अल्लाह ताला ने उन लोगों को एड्रेस किया है जो रेशनली अकली तौर पर चीजों को अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, ताकि वो ईमान का हिस्सा बने, ताकि इमोशंस उसके उसकी डायरेक्शन में आ जाएं और बेहतर से बेहतर काम कर सकें वो लोग। फिर जो है ग्यारहवें इमाम फरमाते हैं लैसतिल इबादतु अक्सर औ कसरति सियाम व सलात, फरमाते देखो इबादत गुजार और इबादत करने वाला बंदा, ये जो है ना ज्यादा रोजे रखने वाला और ज्यादा नमाजें पढ़ने वाले बंदे को हम जो है इबादत गुजार नहीं कहते हैं। इन्नमल इबादतु कसरतु तफक्कुर फी अम्रिल्लाह, कहने की सबसे जो ग्रेट इबादत है, अजीम इबादत है, बड़ी इबादत है, वो क्या है? खुदा के अहकाम के ऊपर गौर व फिक्र करना है, खुदा के अहकाम पर गौर व फिक्र करना सबसे बड़ी इबादत है। इसीलिए जो फरमाया कि खामोशी इबादत है, लेकिन हर खामोशी इबादत नहीं है। गुज़श्ता जुमे में हम अरबी में जो लेक्चर था जिसकी ट्रांसलेशन फ्रेंच में आ रही थी, उसमें भी इसी पॉइंट को हमने रेज किया था कि कुरान मजीद ने भी फरमाया जब कुरान की तिलावत हो तो आप खामोश रहकर सुना करो, मतलब खामोश रहा करो और सुना करो, यानी फरमाया खामोशी इबादत है, बल्कि खामोश रहकर गौर व फिक्र करना इबादत है, खामोश रहकर सुनना अच्छी चीज को सुनना, कुरान की मजलिस की चीजों को सुनना इबादत है, न कि सिर्फ खामोश रहना इबादत है। लिहाजा इंसान देखा जाए अपने मसाइल, अपने सोसाइटी के मसाइल, उम्मत के मसाइल, मुसलमानों के मसाइल, इल्तशी के मसाइल, ये ऐसे क्यों नहीं हो रहा, इससे बेहतर क्या हो सकता है, गौर व फिक्र कर रहा है, ये चीजें इबादत इबादत रखती है। एक सोसाइटी के अंदर जो है एक आदमी को जो है ना बस जैसे सोसाइटी चलाती है ऐसे नहीं चलना चाहिए, सोचना चाहिए बेहतरी कैसे आएगी, क्या राह है, हल है, कहाँ हर्डल्स हैं, कैसे चला जाए, इस चीज को कैसे किया जा सकता है, ये चीज हो सकती है कि नहीं। तो हमें कोई हर चीज के अंदर कोई इस तरह तो नहीं है कि बगैर गौर व फिक्र किए आज से 200 ईयर्स पहले हम एक रस्म बना चुके हैं तो उस रस्म को उसी तरह चलना चाहिए, वो कोई वही के जरिए से तो नहीं आई है। बहुत सी चीजें हैं जो हम बेहतर कर सकते हैं, टाइम टू टाइम रिक्वायरमेंट है, डिमांड्स है वक्त की, बेहतर तरीके से उन चीजों को प्रेजेंट किया जा सकता है, अंजाम दिया जा सकता है, लिहाजा ऐसा करना इबादत है। खुद इमाम जो है अक्ल कुल हैं, हुज्जत बालिगा हैं, मेरे पास वक्त नहीं है। इसीलिए आप देखते हैं कि इसहाक के कंदी वाला जो वाकया आपने कई बार सुना है, जिसने कंट्रोडक्शन ऑफ कुरान के नाम से एक बुक लिखने की कोशिश की, आज भी लिखी जाती है। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स, मुझे अब तो लोग बहुत ज्यादा भेजते हैं खासकर स्कैंडिनेवियन कंट्रीज से, कंट्रोडक्शन कुरान के अगेंस्ट जितना डेटा लिखा जाता है वो मुझे भेजते हैं, आंसर करते हैं। मैं तो हैरान हो रहा हूँ कि इसहाक के कंदी भरे हुए हैं, उस इसहाक के कंदी को जुरत नहीं हुई जब इमाम ने आंसर किया था, क्योंकि वो एक इंटेलेक्चुअल था और रियली वो इंटेलेक्चुअल था। जब उससे अपने स्टूडेंट के जरिए से इमाम ने मैसेज भेजा कि तुम उससे ये तो पूछो कि भाई तुम मिस्टेक कर रहे हो कि तुम अंडरस्टैंड कर गए हो कि कुरान में कंट्रडिक्शन है, क्योंकि जाहरी तौर पर जो तुम्हें वर्ड्स मिले हैं उसमें तुम्हें एक कंट्रडिक्शन नजर आया, तो तुमने सोचा कि ओ ओके एक्चुअल ये इन रियल कंट्रडिक्शन है कुरान के अंदर। तो फिर इमाम ने फरमाया देखो हो सकता है ना कि तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग मिस्टेक कर गई है, तुम अंडरस्टैंडिंग में मिस्टेक कर गए हो, ये पॉसिबिलिटी है या नहीं है, जबकि कुरान कहना कुछ और चाह रहा है लेकिन तुम अंडरस्टैंड गलत कर चुके हो उससे। तो क्योंकि वो बलाखरा एक ऑनेस्ट आदमी था इसहाक कंदी, उसने कहा यस ये पॉसिबल है कि मैं मिसअंडरस्टैंड कर गया हूं, वर्ड सामने वर्ड्स को देखा और उसको से मैंने सोचा एज अ कॉन्ट्रडिक्शन है इधर। जैसे कि अभी रिसेंटली मेरे पास एक आर्टिकल आया है किसी एथियस्ट का जो कुरान के ऊपर कंट्रडिक्शन के टाइटल के साथ लिखा गया है, मेरे पास उसका उर्दू तर्जुमा भी आया विद इंग्लिश, मैं उसके ऊपर देख रहा हूँ, वो वाकई इसहाक कंदी का मामला है, वो मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा है, वर्ड्स को देख रहा है क्योंकि बेचारा बिहाइंड उसको नहीं जा रहा मैं जो मैसेज है एक्चुअल, तो वो सोच रहा है कि ये तो कंट्रडिक्शन है। तो उसने कहा ये, फिर पूछा कि भाई ये आंसर तुम्हारा है, तुम इतने बड़े आलिम हो, इतनी डीपली अंडरस्टैंडिंग कर सकते हो चीजों को, आंसर भी निकाल सकते हो। फरमाया नहीं ये मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि ये फरजंद रसूल जो कि बाब बंदनतुल इल्म है, जो अक्ल कुल है, इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम ने मुझसे ये कहा कि मैं तुम्हें जाकर ये अंडरस्टैंड करवाऊं। दूसरा फिफ्थ सेंस को भी टारगेट करते थे, यानी फिफ्थ सेंस को भी एड्रेस करते थे आइमा अलैहिस्सलाम, क्योंकि बहुत से लोग हैं वो जब तक फिफ्थ सेंस में चीजें ना आए वो माजरत के साथ यानी वो बेचारे समझ ही नहीं सकते हैं, मोटी अकल है उनमें। गाय मसलन वो कहते ना भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात बन जाती है कभी, यानी विद रिस्पेक्ट, यानी मैं सिर्फ समझाने के लिए मैं ये मकोला यूज कर रहा हूँ। एक बहुत बड़ा एक अकल बड़ी है या बेंस, तो वो उनकी तरफ से आंसर होगा बेंस बड़ी है, क्योंकि बेंस बहुत बड़ी है, वो मतलब इसका वजन इतना है, अकल तो इतनी छोटी सी है। तो वो इस तरह के भी लोग होते थे सोसाइटी में, तो उनको भी एड्रेस करते थे आइमा मासूमीन। इसलिए आप देखते हैं उनमें से एक जो फिफ्थ सेंस से ही रिलेटेड है वो करामात है आइमा की, करामात अंजाम इमाम हसन अस्करी अलैहि सलाम ने बहुत सी करामात अंजाम दिया, यानी ऐसी करामात जो आंखों से नजर आती हूँ, कानों से सुनी जा सकती हूँ, ताकि वो जो आंखों और कानों से वो करामत देखने के बाद उनकी अकल की तरफ वो चीजें चली गईं, मैसेजेस गए, फिर उनकी कुछ समझ में आई तो उन्होंने कहा अच्छा ये समथिंग इज नॉट पॉसिबल, किसी कोई इंसान ये काम तो अंजाम नहीं दे सकता है जो हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ने अंजाम दिया है। सो इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम ए खुदा का नुमाइंदा, रसूल का जानशीन है, हम इस चीजों को मानते हैं, इसीलिए मोजज़े या करामात जो अंजाम देते थे। आप देखें मोस्टली जो आइमा और अंबिया मोजज़ा अंजाम देते थे वो इंटेलेक्चुअल्स के लिए नहीं होते हैं, मोजज़ा जो होता है वो उन लोगों के लिए होता है जो फिफ्थ सेंस से बाहर नहीं निकल सके हैं, उनकी लेवल इतनी है। क्यों? इसलिए कि वो कहते हैं अगर आप मेरी आंखों को नजर आने वाली कोई काम करो ना, मसलन हजरत मूसा ने असा फेंका, लकड़ी था, लकड़ी को फेंक दिया, अपने सोटी को, असा को स्टिक फेंक दी, अजदहा बन गया वो। ये चीज नजरों ने देखा, अजदहे की फुनकार को कानून ने सुना तो कहा ये तो कोई अल्लाह का नबी ही कर सकता है। हजरत मूसा उनको इंटेलेक्चुअल बातें बता रहे हैं, सोसाइटी में बेहतर क्या चीजें हो सकती हैं लॉजिकली समझा रहे हैं, दलील दे रहे हैं, वो सर के ऊपर से चली गई, अकल बड़ी है या बेस। लेकिन जब ये कहा, हुजूर पाक के सामने लोग आए, कहा कि अगर आप अल्लाह के नबी हैं तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं, ये जो दरख्त है सामने इसको आप अपने पास बुलाएं। हुजूर पाक ने फरमाया ठीक है, हुक्म दिया, दरख्त आ गया। अब ये आंखों ने देखा ना लोगों को, दरख्त चलता हुआ आ रहा है, इतना बड़ा दरख्त, हाँ यार ये तो कुछ है, ये तो कोई भी नहीं कर सकता, हमारे न पीछे किसी ने किया ना आगे कोई कर सकता है। कह रहे आज क्या इज इट पॉसिबल वापस ले जाओ इसको, कह रहे हाँ चलें जी वापस ले जाओ। कह रहे क्या इज इट पॉसिबल है कि आधे को ले आए आधे को वापस रखें। ये देखें आप इन चीजों को देख रहे हैं, ये सब क्या है, फिर सेंस से रिलेटेड है। क्यों ये बेचारे इस ऊपर जा ही नहीं सकते। नबी को मौजजा इसीलिए दिया, इमाम को करामत या मौजजा इसीलिए अल्लाह ने दिया ताकि लोग अंडरस्टैंड करें कि भाई मैं अल्लाह की जानिब से आया हूं, मैं दिखता तुम्हारे जैसा हूं, रहता तुम्हारे जैसा हूं, खाता पीता तुम्हारे जैसा हूं, लेकिन फर्क ये मैं अल्लाह की जानिब से आया हूं, मेरे पास ऐसी अल्लाह ने सलाहियत दी है, ऐसी कुदरत दी है, ताकत दी है जो आप में से किसी के पास नहीं है, दरे हाल की लुक लाइक सेम, लेकिन एट द सेम टाइम मैं अल्लाह की तरफ से, अब देखो मैं कुछ ऐसे काम करूंगा, आप पूरी लाइफ भी अगर जो है ना ट्रिलियन ईयर्स भी आप कोशिश करो, जितनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करो, नॉट पॉसिबल आप कॉपी कर सकते हो, क्योंकि मोजज़े का मतलब ही यह है, मोजज़ा आजज, आजज का मतलब है कि कोई उसको अंजाम नहीं दे सकता, मा याजिज अनुन्नास, नॉर्मल लोगों में किसी के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि वो उसकी कॉपी कर सके, ना टेक्नोलॉजी ना साइंस किसी भी तरीके से नहीं हो सकता। साइंसदान क्या सूरज को वापस लौटा सकते हैं, रिवर्स पे ला सकते हैं, क्या रिवर्स कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। मौलाए कायनात के लिए रिवर्स हो गया सूरज, ये ट्रू हकीकत है, रिवर्स कर दिया। क्या साइंसदानों के लिए पॉसिबल है कि वो किसी भी माउंटेन में जाए, आल्प्स की पहाड़ियों में जाए, या हिमालय में जाए, या केटू क्रोक्रम में चले जाए, और वहां पर 14 ईयर्स बैठे और बातें करें, इज इट पॉसिबल फॉर देम कि फिर आसमान से कोई तजल्ली आ जाए खुदा की, और तूर वहां पर कोई जो है मैसेजेस आने शुरू हो जाए अल्लाह की तरफ से, इज पॉसिबल विद द टेक्नोलॉजी, नॉट पॉसिबल भाई, बहुत लॉट ऑफ अदर थिंग्स। क्या ये पॉसिबल है साइंसदानों के लिए कि एक जैसे इमाम रज़ा अलैहि सलाम ने अंजाम दिया, एक जीता एक तस्वीर जो कि शेर की तस्वीर है, एक लाइन की तस्वीर बनी है, उसको जीता जागता शेर में बदल दे और वापस उसको तस्वीर में बदल दे, मुमकिन है आप टेक्नोलॉजी के थ्रू, होलो टेक्नोलॉजी या स्मार्ट इंटेलिजेंस के थ्रू आप कोई ऐसी चीज आर्टिफिशियली दिखा सके, नॉट इन रियल, रियल में एक शेर बन सके। डार्विन थ्योरी दे सकता है, हकीकत में किसी बंदर को इंसान में नहीं बदला जा सकता, ये हकीकत है हमारे पास। अगर पॉसिबिलिटी थी डार्विन साहब की तो हो चुकी होती, लिहाजा जरूरी है मौजज़ा अंजाम देते थे। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की भी बहुत सी करामतें और मौजज़े अंजाम दिए हैं। लास्ट पॉइंट जो मैं इस आज की मजलिस में अर्ज करना चाहूंगा वो इमाम के भाई जाफर कज़्ज़ाब का किरदार भी है, इससे बहुत सी चीजें हम समझ भी सकते हैं, और दुख और अंदोह भी है, तकलीफ दे बात भी है। आज भी अफसोस के साथ ये मसाइल हैं, मैं आप जैसे मोमिनीन और मोमिनात की बात नहीं कर रहा, माशाल्लाह से आप बड़े बाशूर दीनदार, दीन की खातिर सेक्रीफाई करने वाले, कुर्बानी देने वाले, हर किस्म की मुश्किल को फेस करने वाले, अपनी जान और माल और औलाद और इज्जत और आबरू हर चीज को आइमे मासूमीन अलैहिस्सलाम के कदमों और उनकी खाक में निछावर करने वाले लोग हैं, लेकिन अफसोस के साथ हम में कमज़ोर ईमान के लोग भी हैं, कमज़ोर विलायत से जुड़े हुए लोग भी हैं जो ऐसी हरकतें आज भी करते हैं। और अफसोसनाक ये है कि खुद इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के भाई जाफर कज़्ज़ाब, जिनको कहा गया खैर बाद में तौबा कर ली, वो अलग बात है, तौबा की नहीं की एक अलग डिबेट है, लेकिन करेक्टर उस वक़्त बड़ा एक सीरियस और इंतहाई सेंसिटिव टाइम में उनको जो किरदार करना चाहिए था, अफसोस ये है कि वो भी ईमान के मरहले में डकमगा गया। मोतमिद अब्बासी के पास जाते हैं जाफर कज़्ज़ाब, और जाने के बाद मोतमिद अब्बासी को कहता है खलीफा तुम कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हो कि शियों के दरमियान حسن عسکری علیہ السلام کی عزت و وقار میں کمی ہو جائے اور اس کے بدلے میری عزت و وقار میں اضافہ ہو جائے، اسٹیٹ مشنری کو یوز کر کے تم کچھ ایسا کر سکتے ہو کہ میں شیعوں کا امام بن جاؤں، مجھے یہ ٹائٹل اور یہ جو عزت و مقام ہے یہ میرے پاس آ جائے، سو میں تو تمہاری پارٹی کا بندہ ہوں، ہم آرام سے چل سکتے ہیں ساری چیزوں کو لے کر، مطلب ان کا کہنا یہ ہے۔ اب دیکھیں وہ معتمد عباسی، یہ جو ٹرپل ایم ہیں، یہ معتز، محتدی اور معتمد، یہ ٹرپل ایمز تھے امام کے دورے امامت میں، یہ لاسٹ ون ہے معتمد۔ یہ معتمد عباسی جعفر کو جواب میں کہتا ہے، یہ ہماری کتابوں میں ہے، اعلم ان منزلت اخیک لم تکن بنا انما کانت باللہ عز و جل۔ اب وہ بھی اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتا ہے، کہتا ہے دیکھو تم یہ بات تو سمجھ سکتے ہو نا کہ تمہارا بھائی حسن عسکری کا جو مقام و منزلت ہے لوگوں کے دلوں میں اور لوگوں کے درمیان، وہ تو وہ ہمارے کنٹرول سے باہر ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہے، لن تکن بنا، ہم اس پہ کنٹرول ہی نہیں رکھتے، ہمارا اختیار ہی نہیں ہے، ہم نے تو ان کو یہ پوزیشن اور یہ سٹیٹس لوگوں کے درمیان، ہم لوگوں کے دلوں میں ہم نے تو نہیں ڈالا ہے، یہ مرتبہ تو کیا ہے، انما کانت للہ عز و جل، یہ تو خدا کی طرف سے ایک موہبت ہے، ایک عنایت ہے، ہم تو اس پہ کنٹرول ہی نہیں رکھتے، اختیار ہی نہیں رکھتے کہ ہم اس کو ختم کریں، جعفر کو جواب دیتا ہے۔ لہٰذا یہ ایک طرف ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اس جاہل و گھمنڈی اور شیطان پرست دشمن کا اعتراف ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مقام و منزلت، پوری اسٹیٹ مشنری 230 سال تک اگینسٹ کام کرنے کے باوجود بھی پوری اسٹیٹ مشنری فیل ہو گئی، کیونکہ آج بھی 11th امام سلسلہ و عصمت و طہارت کی ظاہری طور پر جو امامت ہے، وہ آخری کڑی امام حسن عسکری علیہ السلام کی محبت، ان کی چاہت، ان کے لیے خلوص، ان کے لیے تڑپ لوگوں کے دلوں میں موجود ہے باوجود سختیوں کے 230 سال کے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو ختم ہی نہیں کر سکتے اس کو کیونکہ یہ خدا کی طرف سے دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتا ہے اور ہتکنڈا یا ایک اور کہیں کہ ٹیکٹکس بتاتا ہے، کہتا ہے کہ جو کام ہم کر سکتے ہیں نا وہ یہ ہے، نحن کنا نجتحد فی حق منزلته والوعد منه وکان اللہ عز و جل یعبا الا ان یزیدہ کل یوم رفعته بما کان فیہ من السیانۃ وحسن الصمت والعلم والعبادۃ۔ آپ دیکھیں میں جان بوجھ کر عربی پڑھ رہا ہوں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے، میں شاعری نہیں کر رہا، میں لفاظی نہیں کر رہا، میں ہسٹوریکل جو باتیں ہیں اس کو ایز اٹ از پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں کبھی بھی علمی مسئلوں میں اور ایسے سینسیٹیو مسئلوں میں ایسے فلیکسیبل قسم کی چیزیں یوز نہیں کرتا، کیونکہ یہ آپ مومنین کا حق ہے، بروز قیامت آپ ہمارا گریبان پکڑ سکتے ہیں کہ آپ نے ہمارا ٹائم بھی لیا اور باتیں بھی الٹی آپ نے ہمیں ہوائی باتیں بتا دی جس کی کوئی بیس ہی نہیں تھی، وداؤٹ ریسرچ کے آپ نے باتیں کی۔ کیا کہتا ہے معتمد، یہ منحوس انسان کہتا ہے، ہماری کوشش تو یہ ہے کہ ہم ان کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیں، نعوذ باللہ، امام حسن عسکری علیہ السلام کو لوگوں کی نظروں سے گرا دیں، لوگوں کے درمیان ان کے مقام و مرتبے کو کمزور کریں کسی طریقے سے۔ یہ خود بھی ایک اعتراف ہے معتمد عباسی کا کہ امام کو ہاؤس اریسٹ کیا ہوا ہے، امام سے کسی کو ملنے نہیں دیتے، امام کو کسی سے ملنے نہیں دیا جاتا، امام کے خلاف پروپاگنڈے کرتے ہیں، امام کو جگہ جگہ پر چیلنج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے باوجود اعتراف کرتے ہو کہ جو ان کے فالوورز ہیں، جو ان کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کا ایمان مضبوط ہے۔ میں یہاں پر رک کر، میں بس آخری سیشن میں ہوں، مصائب کی طرف جا رہا ہوں، مولا علی علیہ السلام کا میں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا۔ مولا علی علیہ السلام سے جو ہے کسی شخص نے اسی طرح سوال کیا تھا، تو جواب میں مولا علی علیہ السلام نے، یہ نہج البلاغہ میں ہے، یہ جو نہج البلاغہ جس کو اکثر ہم نہیں پڑھتے ہیں نا، اسی میں ہے، مولا علی علیہ السلام کی کتاب سید رضی نے اکٹھا کیا، اس میں ہے، لو ضربت بخیشوم المؤمن علی ھذا، کہہ رہے ہیں کہ اگر میں مومن کی ناک توڑ ڈالوں اپنی تلوار کے اس دستے سے، دے ماروں مومن کی ناک پر اور کہوں کہ اب غدا علی، کہ علی سے نفرت کرو، کہہ رہے ہیں بے خدا مومن کی ناک ٹوٹے گی، میں توڑوں گا، اس کے باوجود مجھ سے نفرت نہیں کرے گا، لیکن اگر لو وضعت، اگر منافق کے گود میں मैं पूरी दुनिया की दौलत और सोने और जवाहरात को लाके डाल दूं कि अली से मोहब्बत करे तो वो कभी भी नहीं करेगा। तो ये एतराफ है 11वें इमाम आसमान इस्मत और तहारत की, इस 11वें सिलसिले में मोतमिद का एतराफ है। फिर कहता है कि ये जो नाकामी का एतराफ है मोतमिद जैसे लोगों का और जाफर जैसों की साजिशों का, जो कि हवा व हवस का शिकार हो चुका है खानदान इस्मत और तहारत से ताल्लुक रखने के बावजूद, जाफर की रगों में एक इमाम मासूम का खून दौड़ रहा है, उसके बावजूद जो है उसने शैतान के रास्ते को अपना लिया है। सो देर इज अ डेंजर ऑलवेज फॉर एवरीवन। कोई ना कहे रिश्ते नातों से भी बचा जा सकता है, नहीं, किरदार के साथ रिश्ते फायदा देते हैं। विदाउट कैरेक्टर रिश्ते सिर्फ टाइटल लेना, मैं शिया हूं, मैं फॉलोअर्स हूं, फायदा नहीं देता। कैरेक्टर विद टाइटल वो और विद क्लेम वो बहुत बड़ा फायदेमंद है, विदाउट कैरेक्टर सिर्फ टाइटल कोई फायदेमंद नहीं है। लिहाजा जो है आप देखते हैं अजादारों की मोतमिद और जाफर के दरमियान जो बातचीत हो रही है, मजीद कुछ जुमले हैं मैं उसे नजरअंदाज करता हूँ। देखते हैं कि वो सारे हथकंडे इस्तेमाल कर चुके हैं, हर कोशिश उनकी जानिब से की गई कि इमाम के खिलाफ प्रोपगंडा नाकाम हो गए। खुद एतराफ कर रहे हैं कि भाई ये तो हम नहीं कर पा रहे हैं कि इमाम की शान में को घटा दें, लोगों के दरमियान लोग इमाम को छोड़ दें, इमाम के करीब ना जाएं, इमाम से मोहब्बत ना करें, ये मुमकिन नहीं हो सका। नतीजा क्या निकलता है, एक ही रास्ता बचता है, हमेशा जालिमों के पास, फासिदीन के पास, तागूतियों के पास, जाबिरों के पास, डिक्टेटरों के पास, शैतान सिफत लोगों के पास एक रास्ता बचता है, आखिर में जाके कहते हैं फिजिकली खत्म किया जाए। इसीलिए आप देखते हैं आइमाए मासूमीन अलैहिस्सलाम हाउस अरेस्ट है, कोई पॉलिटिकल ओपन एक्टिविटी नहीं है, कोई खुली अपोजिशन इस मीनिंग्स में नहीं है, कोई एजिटेशन नहीं है, उसके बावजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए मोतमिद ने 11वें इमाम आली मकाम को भी उनके अजदाद की तरह जहर दे दिया। और रिवायात के मुताबिक जब इमाम को जहर दिया गया तो जो इमाम का इस वक्त मज़ार है, वो मज़ार जो कि इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम के पास साथ जो मज़ार है, वो मज़ार के नहीं इमाम का घर था, असल में उसी घर के अंदर ही इमाम की तदफीन हुई है। हम यहाँ पर रुकते हैं और एक अर्ज़ अदब व सलाम करते हैं ज़माने के इमाम को। यकीनन देखेंगे अय्याम उनके वालिद की शहादत के अय्याम हैं, हमारा पूरा यकीन व ईमान है और इस्मत व तहारत की सीरत और गुफ्तार और किरदार दोनों इस बात पर गवाह और दलील है कि यकीनन इस वक्त 12वें सरकार 12वें इमाम अपने बाबा के रोज़े में आए होंगे, इमाम सामर्रा में इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम के रोज़े में आए होंगे, यकीनन वहाँ मौजूद होंगे। तो सबसे पहले 12वें सरकार वक्त के इमाम के हुजूर अर्ज ताज़ियत करें, अस्सलामु अलैका या अबा सालिह अल महदी, अस्सलामु अलैका या अबा मुहम्मद, या हसन इब्न अली अल अस्करी, या सैयदना व मौलाना, इन्ना तवज्जहना वस्तशफ़अना वतवसलना बिका इलल्लाह वकद्दमनाक बैना यदै हाजातिना। अपनी हाजतों को ज़हन में रखें, ज़ाहिर है हम गुनाहगार बंदे हैं, हम मिस्कीन और फकीर बंदे हैं, इतने बख्शने वाले अता करने वाले कायनात जिनके कब्जे कुदरत में हैं उनसे जब इल्तिजा करेंगे तो ताज़ियत ज़ाहिर है हम करेंगे, वो इश्क व मोहब्बत है, लेकिन अपनी मोहताजी का इजहार भी करेंगे ना। तो अपनी हाजात को जहन में रखें, जमाने के इमाम से मुत्तसिल हैं, इमाम अस्करी से मुत्तसिल हैं। वक़द्दमना गवैना यदै हाजातिना या वजीहन अंदल्लाह इश्फ़ालना अंदल्लाह साहिब अल असर व ज़मान, इमाम ज़मान आपके हुजूर ताज़ियत पेश करते हैं, आपके बाबा हमारे मौला आका आसमान इस्मत तहारत के 11वां सितारे हसन अस्करी अलैहि सलाम की शहादत पर, मौला आप सुन रहे होंगे, हमने किताबों में पढ़ा है जब आपके वालिद हसन अस्करी के आखिरी लम्हात आए तो आपने अपने गुलाम से कहा कुछ दिन इमाम हसन अस्करी बीमार रहे, बिस्तरे बीमारी पर रहे, जहर का असर था। गुलाम से कहा कि जाओ दूसरे कमरे में, मेरा बेटा मोहम्मद बैठा है, उसे बुला के ले आओ। गुलाम चला जाता है, देखता है कि इमाम जमाना 4 से 5 साल के हैं। इमाम जमाना नमाज पढ़ने में मसरूफ है, उसी आलम में आवाज देते हैं, यब्द रसूलिल्लाह, तेरे बाबा तुझे बुला रहे। इमाम जमाना ने तेजी से सलाम फेरा। सलाम फेरने के बाद फौरन कमरे में आए। 11वें इमाम अपने बाबाओं के चेहरे पर नजर पड़ी, उस वक्त फरमाया माँ भी कयाओ अब ही, फरमाया बाबा जान सब खैर तो है ना, आपके चेहरे का रंग बदला बदला। 11वें इमाम उस वक्त एक तवसुलाना जुमला कहते हैं अपने बेटे यानी जमाने के इमाम, पूरी कायनात को अदल इंसाफ से भरने वाले इमाम, आखिरी हुज्जत है शायद इसलिए। 11वें इमाम कहते हैं या सय्यदा अहले बैती अस्कनी बिकद्र मिन अल्मा, कहते हैं ए अहले बैत ने सय्यदो सरदार, ए पूरे खानदान इस्मत व तहारत के सय्यदो सरदार, क्या ये मुमकिन है कि अपना बाबा के लिए थोड़ा सा पानी लेके आओ। दौड़ के इमाम जमाना चले पानी लेके आते, आगा रफी कहते हैं पानी लेके आते हैं, पानी 11वें इमाम के हाथ में देते हैं। नहीं मालूम कि 11वें इमाम ने पानी पिया हो या न पिया हो, लेकिन हम ये जानते हैं ऐ इमाम हसन अस्करी आप खुश नसीब, आपका बेटा इमाम जमाना 5 साल का खुश नसीब, लेकिन आपके जद अमजद, आपके जद अमजद हुसैन इब्ने अली अलैहिस्सलाम को देखते हैं अपने, आपके जद अमजद की भी 6 से 7 साल की बच्ची सकीना। इमाम जमाना 5 साल की उम्र में यतीम हुए। करबला की शेर दिल खातून ज़ैनब कुबरा भी 5 साल की उम्र में यतीम हुई। हजरत सकीना भी 6 से 7 साल की उम्र में यतीम हुई। अजादारों बस में एक इशारा करता हूँ, कूफे में, कूफे के दरवाजे में जिस वक्त ये काफिला सुबह होने का मुंतजर था, कूफे के शहर से बाहर कुछ मुहाजरीन रहते थे, उनकी ख्वातीन और बच्चे पानी और कुछ खाना लेके आए। पानी जब आया तो सानी जहरा ज़ैनब कुबरा ने पानी का कटोरा हाथ में लिया, हुसैन की मजलूबा को पेश किया। हुसैन की मजलूबा के हाथ में पानी आना था। रावी कहता है उलमा पढ़ते एक मर्तबा आवाज दी चचा अब्बास, फिर आवाज दी अली असगर, लानतुल्लाह अल कौम जालिमीन व सयअलमु अल्लदीन ज़लमु अय मुनक़लब यनक़लिबून व लाक़िबतु लिल मुत्तकीन व अहलत तक़वा व अल यकीन। لعن الله من أعداء الله وأعداء كتاب الله وأعداء رسول الله وأعداء آل رسول الله. پروردگارا بحق محمد و آل محمد، پروردگارا آسمان عصمت و طہارت کے 11ویں ستارے امام حسن عسکری علیہ السلام کا واسطہ، پروردگارا امام زمانہ کا واسطہ، پروردگارا اس وقت وہ ملائکہ جو 11ویں امام کے حرم میں तवाफ कर रहे हैं उन मलाइका का वास्ता, तेरे मोहताज व हकीर बंदे हैं, गुनाहगार बंदे हैं, खताकार बंदे हैं, लेकिन हैं तो आशिकान कुरान व इतरत हैं, मुहिब्बान कुरान व इतरत हैं। परवरदिगारा हमारे छोटे बड़े तमाम खताओं और गुनाहों की मगफरत फरमा। हाजरीन व हाजरात, हमारी माएँ बहनें, बच्चे, जवान, बुजुर्ग, जो भी इस मजलिस में शरीक हैं, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, परवरदिगारा उनकी जो भी हाजात हैं, इस मोहताज बंदों की हाजात को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम का वास्ता, इमाम जमाना का वास्ता अपनी दरगाह में कबूल मकबूल फरमा। परवरदिगारा जब तक जिंदा हैं, मारिफत कुरान इतरत, मारिफत अहले बैत अलैहिस्सलाम और इसी तरह ज़ियारत अहले बैत अलैहिस्सलाम नसीब फरमा। इस दुनिया से जाने के बाद परवरदिगारा कब्र से लेकर तमाम मराहिल में अहले बैत की शफात और खास इनायतें हमारे शामिल हाल फरमा। परवरदिगारा नूर कुरान से हमारी कब्रों को मुनव्वर फरमा। परवरदिगारा नूर अहले बैत और शफात अहले बैत से कब्र से लेकर बरज़ख तक के तमाम सफर को हमारे लिए आसान बना दे। परवरदिगारा जिन्होंने मजलिस का एहतमाम किया है, दामे दिरहमे सुखने कदमे जिन्होंने इसमें शिराकत की है, परवरदिगारा इसे इबादत आलिया करार दे और अपनी दरगाह में कबूल और मकबूल फरमा। अपनी दरगाह से परवरदिगारा उनकी जान में, उनके घर में, उनकी फैमिली में, उनकी औलाद में, नस्ल दर नस्ल परवरदिगारा उनके अजीज व अकरबा, उनके यार दोस्त आशना, मजलिस में मौजूद तमाम मोमिनीन व मोमिनात सब के लिए नूर व नूरानियत इनायत फरमा, खैर व बरकत का नुज़ूल फरमा। जो भी हाजात हैं अपनी दरगाह में कबूल व मकबूल फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउद दुआ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुह। अगर नौहा पढ़ रहे हैं तो मातम हुसैन, नहीं तो ज़ियारत पढ़ लीजिएगा वहां पे।